अगर हम उस पर बात करें और फिर उसके बाद जो हमें रिएक्शन सामने आ रहा है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नज़र आता है। और जैसे मैंने कहा कि क्या महज किसी का अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेना या ये रूप या भेस बदल लेना सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियों में होना, क्या ये उनको एक तरह से गारंटी दे देता है कि वो इंतहाई हसास इलाकों तक पहुंच जाएंगे, उनके लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे?
नहीं, मेरा ख्याल में ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, कोई इसकी वजह नहीं है कि वो वर्दियों में पहन के आ जाएं, मलेशिया की आर्मी की एयरफोर्स की वर्दियों में आ जाएं, इसका कोई जवाब नहीं है। और ये सर्टनली एक डेफिनेट सिक्योरिटी लैप्स है, इसको नहीं होना चाहिए था। उनको एंटर करने से पहले नो मैटर वो किस वर्दी में हो, इस बात को इंश्योर करना चाहिए था कि कोई भी जो है किसी भी वर्दी में बेस कैंप के अंदर दाखिल न होने पाए। थोड़ी सी दो चार और चीजें भी इसमें शामिल हो जाती हैं। उन्होंने जो वक्त चुना सुबह का, मतलब सुबह नमाज का वक्त चुना, उस पर जरा थोड़ी सी आप कह लीजिए कि सिक्योरिटी के जो अफराद होते हैं, कोई नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई लैप्स होते हैं, तो सुबह कोई बाथरूम की ड्यूटी चेंज होती है, तो मैं हाल उन्होंने पेरेंट्स ने जानबूझ के ऐसा वक्त डेफिनेटली चुना है जिसमें वो समझ रहे थे कि उनमें इसमें कामयाबी होगी और वाकई उन्हें ये अटैक करने में कामयाबी हुई है।
सही, तो अगर
मेरा ख्याल ये नहीं होना चाहिए था।
एग्जैक्टली, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अगर हमलावर ये प्लान कर सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस वक्त थोड़ी सी अलर्ट नहीं होंगी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के भी पेश नज़र तो ये हो सकता है और उनके पास भी कंटीजेंसी प्लान्स यकीनन होने चाहिए, तो ये होंगे।
सिक्योरिटी एजेंसी को भी इस चीज के लिए ऑफिसर तैयार होना चाहिए कि जो उस पे हमला करेगा, जो टेररिस्ट होगा या कोई भी हमला करेगा, तो वो कोई दिन के 12 बजे या 2 बजे तो हमला नहीं करेगा।
सही
ना, वो आपको वार्निंग देकर बता के आएगा कि मैं हमला करने आ रहा हूँ। जब जो इस किस्म की टेररिस्ट ऑपरेशन की जाती है, जो स्पेशली अनकन्वेंशनल वारफेयर में या गुरिल्ला वारफेयर या जो भी इसको कह रहे, उनके लिए भी बड़ा जो एलिमेंट होता है सरप्राइज होता है कि आप एक ऐसा अटैक करें जिसमें आपका जो टारगेट है, जो विक्टिम है, वो सरप्राइज है, वो संभल ना पाए जब उन पे अटैक हो। तो
exactly.
उन्होंने ऐसा वक्त चुना है, इस तरीके से उन्होंने हमला किया है, उन्होंने वर्दियां पहनी है। तो मेरा ख्याल इन एक्सप्लेनेशन का, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, इन एक्सप्लेनेशन का कोई रीजनेबल जवाब नहीं है। ये एक सिक्योरिटी लैप्स है और इसका और कोई जवाब नहीं है।
एग्जैक्टली, नुमान जफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खैर मकदम, आप क्या देखते हैं, क्या इस वाक़े को किसी तरीके से वकू पजीर होने से रोका जा सकता था, पेशगी को प्लानिंग की जा सकती थी, और क्या महज हमला आवरों का मारा जाना इसको एक बड़ी कामयाबी समझ लेना काफ़ी होगा?
देखिए, ये उनको मार देना ये कामयाबी तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये लोग जो आते हैं एक तरह से इनको इसी कैटेगरी में हम शामिल करते हैं जिनको हम सुसाइडल अटैक वाले कहते हैं।
बिल्कुल, वो मरने के लिए तैयार आते हैं।
उनको पता होता है कि जब आर्मी आ जाएगी या दूसरे लोग आ जाएंगे तो उनका बचना बहुत कम चांसेस उसके होते हैं। देखिए, मसला ये है कि मैं काफी अरसे से इस बात के ऊपर हूँ कि अभी तक एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी इनके पास नहीं है। ये रिएक्टिव स्ट्रेटजी इनके पास है कि जहाँ कोई अटैक हो जाता है उसके रिएक्शन के अंदर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी आ जाती है और दूसरे लोग भी आ जाते हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये कोई आम जगह नहीं थी, ये अगर मतलब इनका एयरफोर्स का एक अहम मतलब ये एक जगह है जहाँ पे वो उनके लोग बैठे हुए हैं, और ये कोई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है ये कोई नई पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई। तकरीबन इतना 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि हम इसको फेस कर रहे हैं, अभी तक ये अपनी चीजों को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से सारा मामला होगा? और दूसरी बात यह है कि वो कल हम देख रहे थे कि एक गाड़ी की पिक्चर भी दिखा रहे थे कि गाड़ी आई है और आराम से इनको छोड़ के चली गई है। तो कहाँ गए, कहाँ इनके वो चेक पोस्ट हैं जो इनको चेक करती हैं? अगर उन्होंने वर्दियां भी पहनी हुई थी तो आखिर उनको कोई SOP होगा कि अगर उन्होंने उसको पास पार करना है किसी चेक पोस्ट को, उनके कार्ड होंगे? खाली वर्दी पहन लेने का मकसद ये नहीं है कि इनका ताल्लुक मिलिट्री से है या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी।
और नुमान, वैसे अगर कोई वर्दियां पहन सकता है तो वो यकीनन कार्ड भी बना सकता है। आज के दौर में पूरी टेक्नोलॉजी पे उनकी भी दस्तरस है। आजकल तो सिम या चिप वाले कार्ड्स हैं, इवन अगर हम एक सिविल इदारे में जॉब करते हैं लेकिन हमारे पास कार्ड, अगर वो पंच होगा, वो एक्नॉलेजमेंट देगा तो ही हम अपने ऑफिसेज में आ सकते हैं। तो इससे कतन ये मतलब नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड हमारी शक्लों से वाकिफ़ नहीं है और वो हमें खुलेआम इजाज़त दे दें, या अगर हम कुछ किसी ख़ास कॉस्ट्यूम या वर्दी के अंदर मौजूद हैं तो हमें वो आने दें। तो अब ये चीज़ें शायद अप्लाई करने का वक्त बहुत पहले आ गया था और इसको होना भी चाहिए था। डॉक्टर साहब ये बताइएगा चीमा साहब, कल जो फौरी तौर पर रिएक्शन आया, ब्रीफिंग दी गई इस बारे में, और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि लगता है कि ये अफगानिस्तान के अंदर इसकी बैठ के प्लानिंग हुई है, हमने कल भी सवाल उठाया था कि फौरी तौर पर यह कैसे वाजे हो जाता है, एक बात, और दूसरी बात हमें यह बताइएगा कि रिएक्शन में जो गिरफ्तारियां आज भी हुई हैं या अमूमन इस तरह के वाक़ात के बाद होती हैं वो किस हद तक मदद देती हैं इसके जो प्रोप्राइटर्स हैं वहां तक पहुंचने में या कुछ क्लू देने में। जी चीमा साहब,
कि जो उस वक्त कम्युनिकेशन हो रही होती हैं, जो टेररिस्ट को डायरेक्शन हो रही होती हैं, जब वो इस किस्म की ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले वो अपने टेलीफोन जो है उनको वो साइलेंट रखते हैं कुछ अर्से के लिए, ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके तो वो कहाँ पे हमला करने वाले हैं उनकी। लेकिन जब वो एक जगह सेलेक्ट करके उस पर हमला कर देते हैं तो फिर उनको इस चीज की परवाह नहीं होती कि उनकी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त उनका मकसद ये होता है कि जिस जगह पे उन्होंने हमला किया है उससे वो मैक्सिमम डैमेज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक कर सकें, शहीद कर सकें, जो भी आप कहना चाहें, तो उनकी ऑपरेशन जो है मैक्सिमम डैमेज हो जाए वो कामयाब हो सके। इसलिए उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन की लोकेशन का मालूम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं वो लोग जो उनको पीछे से हैंडल कर रहे होते हैं।
सही।
तो उनके जो मोबाइल टेलीफोन है वो आपस में एक्टिवली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं,
ठीक है,
इसलिए ये आइडेंटिफाई चीज हो सकती है कि उनके पीछे से हैंडलर जो है वो किस जगह पे मौजूद है, क्या वो साउथ वजिस्तान में है, नॉर्थ वजिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या किसी और जगह से है। पीटीए के साथ जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके पास इतनी मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद है कि वो दो टेलीफोन मोबाइल पर अगर बात हो रही हो उसकी वो लोकेशन डिटरमिन कर सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन दो बंदों के दरमियान कहाँ से हो रही है।
सही।
तो मेरा ख्याल है ये बात मैं इसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा,
ठीक है,
अगर वो ये कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रही थी, और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस बारे में काफी सेंसिटिव है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे तालुकात मजीद खराब ना हों।
Exactly.
हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं
जी, बल्कि जब ये इम्प्रूवमेंट के कुछ आसार थे, हमने ये देखा कि दोनों तरफ इस तरह के वाक़यात में कमी आई। सरवर अहमद जय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका बेस्ड हैं, बहुत फ्रीक्वेंट उनके विजिट अफगानिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी वो एक्टिव हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस भी देते हैं। सरवर अहमद जय साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल के पिशावर के वाक़े के फ़ौरन बाद ISPR के जो स्पोक्स पर्सन हैं और मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने डायरेक्टली कहा कि काबुल में प्लानिंग हुई। आज पाकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर, उन्होंने भी नाम लिए बगैर यही बताया कि वहाँ बैठ के पाकिस्तान पर हमलों की प्लानिंग होती है। पाकिस्तान से बात करो तो वो कहता है कि वहाँ पर मेन कहना चाहिए कि हब है मिलिटेंट्स का अफगानिस्तान पे हमले हों, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो हब हैं जहाँ से बैठ के प्लानिंग हो रही है। दोनों मुल्कों के लिए कितना ज़रूरी हो गया है कि वो सियासी अख्तलाफात हों या स्ट्रेटजी के मामलात पे अख्तलाफात हों वो अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे के साथ तआवुन करें ताकि इस तरह के हमलों से बचे रहें, जैसा कि हमने देखा है कि अभी रिसेंट पास्ट में कोई बड़े अटैक्स नहीं हुए दोनों तरफ।
जी मेरे ख्याल में बात यह है कि आजकल अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट और दूसरी यूरोपियन, स्पेशली जर्मन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे काफी प्रेशर लाया है तकरीबन कोई दो हफ्तों से कि अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेशन करे और तालिबानों को वापस लाए कि निगोशिएशन टेबल पे और सीरियसली उनको कन्विंस करे।
सही।
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान काफी अंडर प्रेशर था, जो सरताज अजीज गया था अफगानिस्तान चंद दिन पहले, उसने भी अशरफ गनी को बताया था कि बिल्कुल हम सिंसियर बातचीत में आप लोग आ जाए, वापस आ जाए नेगोशिएशन टेबल पे। अफगानिस्तान के गवर्नमेंट एक जरा क्या हुआ था, उनका कोई ट्रस्ट नहीं था पाकिस्तान पे कि वो सीरियस नहीं हमारे साथ, तो उसे उन्होंने शिकायत किया था अमेरिकन को, चाइनीज को, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को। तो मेरे ख्याल में ब्लेम गेम जो है दोनों कंट्री के नुकसान पे, अगर पाकिस्तान भी ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को, अगर अफगानिस्तान भी ब्लेम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबको पता है कि सिचुएशन क्या है,
ठीक है,
सब कुछ है।
लेकिन सरवर साहब दोनों तरफ अब बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है, तो महज ब्लेम गेम पे इतना इनसार क्यों है आपस में डायलॉग के? क्या लगता है कि दरवाजे बंद हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स नहीं है मौजूद इस वक्त?
بالکل ہے, میرے خیال میں بالکل ہے, لیکن اس طرح کہ افغانستان کی گورنمنٹ کی لیڈرشپ بھی یونائٹیڈ نہیں ہے, وہاں پر بھی مشکل موجود ہے. دوسرے پاکستان کے جو کور آبجیکٹیوز ہیں افغانستان میں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, کیونکہ اشرف غنی جو آیا تھا افغانستان میں پہلی بار جو پریزیڈنٹ سطح ہوا اس کا, وہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے روابط اسٹارٹ کیے اور انڈیا ایک ذرا سائڈ لائن ہو گیا, تو بعد میں جو واقعات ذرا زیادہ ہو گئے, افغان کابل میں اٹیکس ہو گئی, جو بامنگ ہو گئی, تو اشرف غنی پھر بھی انڈائریکٹلی انڈیا کو پھر اپروچ کر دیا, تو پاکستان کو پتہ چلتا ہے, انٹیلیجنس کو پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو کور آبجیکٹیو دونوں کنٹری کا جو ہے میرے خیال میں آمنے سامنے کلیئرلی ڈسکس کرنا ہے. جب تک انہوں نے کلیئرلی صادقانہ کلیئرلی ڈسکس نہ کرے کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے, سیلف انٹرسٹ کیا ہے, افغانستان کا سیلف انٹرسٹ کیا ہے, پاکستان کا کیا ہے, انڈیا کا کیا ہے, جب میرے خیال میں یہ ڈسکس نہ ہو جائے آمنے سامنے, ابھی تک میرے خیال میں وہ کمپلیٹلی آئی ایم ناٹ کنوینس. جو طالبان آئے تھے اور ڈسکشن ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا, مری میں بھی میٹنگ ہوا تھا, قطر میں, دبئی میں, دوسری جگہ پہ, ابسولوٹلی نتھنگ ہیپن. تو میرے خیال میں کور آبجیکٹیو پہ بات کرنا ہے, سیلف انٹرسٹ پہ بات کرنا ہے. پاکستان جو ہمارے ساتھ 1300 کلومیٹر سرحد ہے اس کا, انڈیا کا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, پھر بھی ہم انڈیا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے بغیر نہیں. لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو چاہتا ہے افغانستان میں وہ کرے. میرے خیال میں اگر سیریسلی یہ سارے سیلف انٹرسٹ یا جو نیشنل انٹرسٹ ڈسکس ہو جائے, کچھ نہ کچھ میرے خیال میں معاہدے تک.
بہت بہت آبجیکٹیو آپ کا انالیسز دونوں طرف کی آپ نے وہ بات کی ہے. نعمان ظفر آپ یہ بتائیے گا, نان اسٹیٹ ایکٹرز اگر یہ دو ریاستیں ہیں, شورش زدہ ہیں, وار ہٹ ہیں, اور اگر ان کے درمیان کوآپریشن نہیں ہوگا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز اس صورتحال کو کتنا ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا رہے ہیں؟
دیکھیں جتنا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک دھماکہ وہ افغانستان میں کرتے ہیں تو امیڈیٹلی یہ خیال دماغ میں آ جاتا ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ دماغ میں خیال آئے گا کہ پاکستان کی طرف سے یا ان کے قبائلی علاقوں کی طرف سے آئے, اور جب پاکستان میں کچھ ہوگا تو امیڈیٹلی یہاں سے اب یہ کہا جائے گا کہ جی افغانستان میں. دیکھیں وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں ایسے ایریاز موجود ہیں جو جہاں پہ گورنمنٹ کریٹ موجود نہیں ہے. یہ ایسا ایریا پاکستان کے اندر بھی ٹرائبل ایریا کی شکل میں موجود ہے, جس کو ہم نارتھ وزیرستان کہہ لیں, کچھ اور کہہ لیں, ایسے ایریاز افغانستان میں بھی موجود ہیں. اور اس طرح کے ایریاز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پلنے پھولنے کی جگہ ہوتی ہیں, جہاں پہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں, پھر وہیں پہ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اور وہیں پہ اپنے فیصلے کر کے یہ لوگ پھر حملے کرتے ہیں دونوں طرف. سب سے بڑا مسئلہ جو اب ہمارے لیے آ رہا ہے دونوں ملکوں کے لیے کہ ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان کا آپس میں جو مطلب کانفیڈینس لیول ہے وہ بہت لو ہے. کوشش ہوئی ابھی جب یہ پریزیڈنٹ اشرف صاحب آئے ہیں گورنمنٹ کے اندر تو کوشش دونوں طرف سے ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پاکستان وزٹ کرنے آئے تو ڈائریکٹ ان کو جی ایچ کیو پنڈی لے جایا گیا, جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو پاور ہاؤس ہے وہاں ان کو لے جایا گیا, آنر دیا گیا. مطلب ایک اچھا جیسر ان کی طرف سے آیا, انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم پاکستان میں اپنے ملٹری کے لوگوں کو ٹرین بھی کروائیں گے, سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں دوبارہ وہی ایلیمنٹس اوپر آ گئے جنہوں نے جو نہیں چاہتے کہ حالات نارملائز ہوں. تو اب جو نیڈ آف دا ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ دونوں پولیٹیکل جو لیڈرشپ دونوں ملکوں کی سیریسلی بیٹھ جائیں بیچ میں, اور آپس میں بیٹھے تیسرے لوگوں کو بیچ میں نہ بٹھائیں, اور آپس میں بیٹھ کے اپنے سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی کہ اپنے ٹارگیٹس کو سیٹ کریں, دونوں آپس میں بیٹھیں کہ بھی ہمارے یہ ٹارگیٹس ہیں. اور پاکستان کے اوپر میرا خیال میں کچھ زیادہ ذمہ داری عائد ہوگی, کیونکہ افغانستان اب ایک طرح سے بری وقت سے گزر ہے, انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے. تو پاکستان کو کچھ اپنا خوف کم کرنا چاہیے کہ اگر افغانستان کے اندر کسی تیسرے جیسے انڈیا کی رول ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے خطرہ ہوگا. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرے کہ اگر وہاں پہ اگر جس کا بھی اثر پڑے گا تو وہ ہمارے اوپر اثر نہ ہو. اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط کریں, اپنے بارڈرز کو اچھے طریقے سے مینیج کریں. تو اس کے بعد افغانستان کے اندر جس طرح کی بھی گورنمنٹ آئے گی تو میرا نہیں خیال ہے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا. ہاں اثر ضرور ہوگا لیکن بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا. ان کی ہماری پالیسیز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے اینٹی پاکستان حکومت وہاں آتی جاتی تو ہمارے اوپر کوئی پرابلم نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. دیکھیں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, وہ افغانستان کے اندر بھی مر رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی مر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کے ایس او پیز بنائیں, بیک کی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ یہ تھرڈ پارٹیز ہیں یہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے.
ایگزیکٹلی. نعمان ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر اقبال چیما صاحب, سرور احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آصم اللہ بخش صاحب سوشل سائنٹسٹ ہیں, کچھ دیر میں ہمیں وہ بھی جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر چیما صاحب آپ یہ بتائیے گا, ہم چونکہ اس کے ریئیکشن پہ بات کر رہے ہیں, اس کا ایک پہلو اس کا ہم نے احاطہ کیا ہے, کنڈمنیشن مذمتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں, اور امریکہ کا جو محکمہ خارجہ ہے اس کی طرف سے ایک एक्नॉलेजमेंट भी बड़ी बोल्ड और थोड़ी लाउड एक्नॉलेजमेंट हुई कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देने वाला मुल्क है। इससे क्या थोड़ी आपको लगता है कि पाकिस्तान की हौसला अफजाई होगी, एक्नॉलेजमेंट हुई है, मज़ीद इससे क्या पाकिस्तान को मैसेज कम्युनिकेट होता है?
मेरा ख्याल में जो इसमें पाकिस्तान जो है पिछले तकरीबन आप कह लें कि 8-10 सालों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है जिसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वॉर ऑन टेरर में। वॉर ऑन टेरर में जो कंट्रीब्यूशन है वो इस शक्ल में मौजूद है कि हमने कितने थाउजेंड ट्रुप्स वहाँ पे फाटा में अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, कब से डिप्लॉय है, उसकी इकोनॉमिक मिलिट्री और पॉलिटिकल कास्ट पाकिस्तान के लिए क्या है। 35,000 के करीब पाकिस्तान उसमें शहीद हुए हैं, जिसमें एक खासा कंपोनेंट पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पहली पाकिस्तान आर्मी के लोगों का है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कास्ट जो है वो पे की है फॉर फाइटिंग द वॉर ऑन टेरर इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अफगानिस्तान। उसकी अगर अप्रिसिएशन होती है तो जाहिर है पाकिस्तानी जो है फील बेटर कि हम इस जंग में अकेले नहीं है, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो हमारे एलाइज हैं, जो एलाइज ऑन वॉर ऑन टेरर है वो हमारे साथ हैं।
सही।
तो उससे पाकिस्तान में एक अप्रिसिएशन होती है, एक हौसला बढ़ता है कि हम इस जंग में अकेले नहीं है और ये जंग सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये कई मुल्कों की एक किस्म की कह लें कि एक मुश्तरका एक जंग है जो इसमें जारी है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक ड्यू चीज है, इसको बल्कि जितना अप्रिशिएट किया जा रहा है इससे ज्यादा अप्रिशिएट जो है इसको करना चाहिए।
जी।
शुरू में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जो तलकात हैं, जब अशरफ गनी साहब तशरीफ इकदार में आए इनके तलकात बड़े अच्छे जा रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल सही ऐलान किया गया था कि जो अफगानिस्तान चाहता है अपने मुल्क में, जिस किस्म की हुकूमत चाहता है, जो उनकी पॉलिसी है, पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगा। इनके बड़े अच्छे जो मुज़ाकरात हैं वो भी शुरू हुए, लेकिन जो मेरा ख्याल है इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि गलतफहमी सिर्फ एक इशू पे पैदा हुई।
ठीक है।
इशू ये था कि जब मरी के मुज़ाकरात हो रहे थे उस दौरान में अफगान इंटेलिजेंस ने ये ऐलान किया कि मुल्ला उमर जो है वो फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं।
सही।
और अफगानिस्तान की हुकूमत शायद ये तवक्को कर रही थी कि अगर मुल्ला उमर मरे हैं और ये शक ये किया जाता है कि वो पाकिस्तान में मरे हैं, जिसकी के पाकिस्तान हुकूमत जो है तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं पता कि वो पाकिस्तान में मरे हैं या अफगानिस्तान में मरे हैं, लिहाजा हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। सिर्फ ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से गलतफहमी पैदा हुई अशरफ गनी साहब की हुकूमत में और पाकिस्तान की हुकूमत में।
सही।
मेरा ख्याल है अशरफ गनी साहब को पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग था उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने उनको बताया नहीं या पाकिस्तान को मालूम नहीं कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में मारे गए या अफगानिस्तान में मारे गए या फौत हुए कैसे हुए। शायद ये एक बड़ा कन्फाइंड किस्म का एक लिमिटेड स्कोप का एक इशू था, तो इसको लिमिटेड स्कोप में रखना जो है बहुत जरूरी था। इसकी वजह से जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में डायलॉग चल रहा था उसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए था,
बल्कि
उसको रिकवर करना चाहिए था इस किस्म के हादसे से। ये डायलॉग सस्पेंड कर दिया तो पाकिस्तान में लोग ये भी कह रहे थे कि जी उनकी अपनी हुकूमत में काबुल के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं और जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है उनके साथ नहीं है, और कुछ काबुल हुकूमत में ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का डायलॉग कामयाब ना हो। तो ये चंद वजूहात थी जिसकी वजह से ये डिसरप्शन पैदा हुई।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जफर इकबाल चीमा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सरवर अहमद जई साहब, आप इस सेगमेंट पे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। आपके ख्याल में इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे या हो रहे हैं अगर, तो इसके बावजूद क्यादत का डायलॉग के साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले रखना कितना ज़रूरी है? जी सरवर अहमद जई साहब,
आप सुन रहे हैं?
जी मैं आपको सुन सकता हूँ।
अच्छा, मैंने कहा चीमा साहब ने बहुत अच्छी बात की, चीमा साहब मेरा उस्ताद भी बकायदा यूनिवर्सिटी में। ये खास खास के आखिरी अटैक था पाकिस्तान पे या अफगानिस्तान में आखिरी अटैक होते थे, शायद इस तरह और भी ज्यादा हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में लीडरशिप मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं, अफगानिस्तान में यूनाइटेड लीडरशिप नहीं है, इसलिए अमेरिका यूरोपियन पाकिस्तान को ज्यादा अटेंशन देता है, क्योंकि जो भी लीडरशिप वहां पे आता है वो सारे एक होते हैं। یہاں پہ اب ڈویژن بہت زیادہ ہے افغانستان میں, پرو انڈینز ہے, پرو رشینز ہے, پرو ترکش ہے, پرو چائنیز ہے, اور دوسروں کو بھی بلیم کرے کہ پرو پاکستانی ہے. وہاں پہ یونائٹیڈ لیڈرشپ نہیں ہے, لیڈرشپ جو ہے ساری ٹیمپرری افغانستان میں. وار لوڈ بہت زیادہ ہے, طالبان کی مشکل ہے, وہاں پہ ایتھنیسٹی پرابلم بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سنسیئرلی افغانستان کو چاہیے اور پاکستانی لیڈرشپ کو چاہیے اور امریکن بیکنگ کے, امریکن یورپین بیکنگ اور ضمانت پہ کہ وہ آ جائے, طالبانوں کو کنوینس کرے کہ وہ آ جائے, ایک نیگوسیشن, اسٹریٹ فارورڈ نیگوسیشن اسٹارٹ ہو جائے. اگر اسٹریٹ فارورڈ نیگوسیشن نہیں ہوتا اسد بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پرابلم جو یہ ریجنل پرابلم ہے, یہ ریجنل پرابلم, اس میں ایران بھی دخل ہے, انڈیا بھی دخل ہے, پاکستان بھی دخل ہے, اور بھی کچھ پاور, انٹرنیشنل پاور جو اس میں دخل ہے. تو میرے خیال میں بہت سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا, امریکن آ گئے چلے گئے, برٹش آ گئے چلے گئی, رشین آ گئے تھے چلے گئی, لیکن پاکستان کہاں نہیں جا سکتا, افغانستان کہاں نہیں جا سکتا, ہم پڑوسی ہے. تو میرے خیال میں دونوں لیڈرشپ کو میچورٹی فیصلہ کرنی چاہیے, اور جو بھی سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ میرے خیال میں اسے بات کرنی چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا سرور احمد صاحب, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. نعمان ہمارے ساتھ رہے گا. آصم اللہ بخش صاحب سے ہمارا فائنلی رابطہ ہو گیا ہے, کل سے ہم اگر ہم کہیں گے ٹرائی کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, کالمسٹ ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں, ہم ان کو بہت فالو کرتے ہیں, خاص طور پہ ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ, مختلف ایشوز پہ جب وہ کمنٹس دیتے ہیں. اس حادثے کے بعد ایک فوری طور پہ, اس حملے کے بعد, حادثہ نہیں کہوں گا, اس حملے کے فوری بعد جو ریئیکشن ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آیا, لوگوں نے کوشچن بھی کیا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے, اور ایک بار پھر اگر وہ اتنا فورسفلی ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا مطلب لیا جائے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیمورلائز بھی اس میں نظر آئے. آصم اللہ بخش صاحب کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے, اس طرح کی جنگوں میں قوموں کا حوصلہ کتنا بڑا ہونا چاہیے, ان کی توقعات اگرچہ بہت ہونی چاہیے, ہائی ہوپس ہونی چاہیے, سپورٹ ہونی چاہیے, لیکن خطرات کے بارے میں ان کی کیلکولیشنس کتنی ہونی چاہیے, یا کیا ان کو ایک بڑی ریئلسٹک حقیقت پسندانہ تصویر ان کے سامنے رہنی چاہیے, آصم اللہ بخش صاحب سے جانتے ہیں. جی آصم اللہ بخش صاحب, کیا لوگ اب مایوس ہو کے بیٹھ جائیں, کیا کریں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو دو تین پرسپیکٹو میں انالائز کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج سے تین یا چار سال پہلے ایک روٹین یا ایک سچویشن تھی,
جی جی,
یا جو سیکیورٹی کا ہر وقت ایک سیٹ رہتا تھا, کیا آج بھی وہی ہے؟ اگر تو وہ ویسا ہی ہے پھر تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ بالعموم جو ہے وہ جوں کی توں ہے.
صحیح.
اگر ایسا نہیں ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اسپیسنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ایسے واقعات میں, اور اسپیسنگ بڑھنے کے ساتھ ایسے واقعات کا جو رسپانس میکانزم ہے وہ بھی ہمیں زیادہ ایجائل اور زیادہ الرٹ نظر آتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سمت میں کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ مثبت ہوا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں.
صحیح.
جہاں تک یہ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہوتا ہے نا, کہ یہ ایک بنیادی طور میں ہمارے یہاں چونکہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو ویسے ہی سمجھ لیا جاتا ہے.
صحیح.
کمر توڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو ڈس ایبل کر دیا گیا ہے,
ڈسمینٹل ہو گئے, منتشر ہو گئے, ختم نہیں ہوئے. ہاں جی,
اسپائنل کارڈ ہماری جو ہے جب وہ کام چھوڑتی ہے تو سارا جسم جو ہے, لمبس جو ہے وہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں, آن دیئر اون ہو جاتے ہیں, ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بات ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بالکل جو ان کی ایگزسٹنس لیول ہے وہ زیرو پہ کر دیا گیا, بلکہ یہ ہے کہ ان کی جو ایک کوآرڈینیٹ کر کے کاروائیاں کرنے کی صلاحیت ہے اس کو کمزور کر دیا گیا ہے.
صحیح.
ابھی یہ چونکہ امبیڈڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں, عام آدمیوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں, اس لیے پھر آپ کو ایک جو ہے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے. اگر تو آپ بہت زیادہ ہر ایک کی سکروٹنی شروع کر دیں تو پھر بھی نارمل جو لائف سائیکل ہے یا لائف اسٹائل ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے.
صحیح.
اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ وہ کرٹیل فیل کرتے ہیں اپنی فریڈم کے حوالے سے, اس لیے وہ ایک فائن بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ آزادی بھی رہے اور ایسے لوگوں کی سکروٹنی بھی ہوتی رہے, اور یہ چونکہ کافی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے آپ آہستہ آہستہ ان کو ویڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ آپ دیکھیے کہ ایک طرح سے فرنٹیئر ریجن میں ہی ہوا ہے, یعنی جو آپ کا سرحدی علاقہ ہے جہاں سے لوگوں کا ہمارے یہاں انفلٹر کر جانا اور انفلٹریٹ کر جانا اور پھر ایسی ایکٹیویٹیز کر لینا وہ ممکن رہے گا جب تک پھر بارڈر کنٹرول بھی اور سخت نہیں ہوں گے. اس حوالے سے ہمیں پھر افغانستان سے بات چیت کرنی پڑے گی. تو یہ اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے, اور ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے واقعات اور ہوں گے اور ان میں نقصان بھی ہوگا, लेकिन ये है कि हमने जो अपना बेंच मार्क रखना है कि वाकयात कितने कम होते जाते हैं
सही।
और उनमें नुकसान की शिद्दत माजी मुकाबले में कितनी कम होती जाती है, और इससे फिर वो एक कॉन्फिडेंस और एक ज्यादा बेहतर सिक्योर एनवायरनमेंट जो हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका आसिम अलबक साहब, आपने हमें ज्वाइन भी किया, अपना एनालिसिस दिया। नौमान जफर आप हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, जिसमें हम अलकायदा के लिंक्ड इंसर्जेंट्स उनकी कार्रवाई पर बात करने जा रही हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे, दहशत गर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग, आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी,
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे। शाम के अंदर सरकारी फ़ौज के कम से कम 56 एहलकारों को हलाक कर दिया गया है, और इत्तला जो मिल रही है उसके मुताबिक ये इदलिब सूबे में ये वाक़या पेश आया, और इसमें अलकायदा और उससे मुंसलिक ग्रुपों की ये कार्रवाई बताई जा रही है। अगर देखा जाए तो बड़े अरसे के बाद अलकायदा किसी बहुत बड़े कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है या उसमें उसका नाम आ रहा है। और ये वाक़या अगरचे ये आज का नहीं है, इस हफ्ते ये पेश आया है, लेकिन एक जो गैर सरकारी तंजीम है और इंसानी हकूक़ पर नज़र रखने वाला एक ग्रुप है शाम का, उसकी तरफ से ये ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं कि तस्दीक के बाद ये बात बताई जा रही है कि 56 लोग जो हैं जिनका ताल्लुक शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ था उनको हलाक कर दिया गया। यकीनन बहुत बड़ा ये कहना चाहिए कि वाकया है, बिग ब्लो हो सकता है इस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो ऑलरेडी एम्बेटल्ड हैं, जिनको सामना है वहाँ पर अलकायदा का, जिनके लिए दाइश एक बजाते खुद बहुत बड़ा ख़तरा बनी हुई है। तो इस तरह एफिलिएट्स की इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ स्टेट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी जो एक नकल मकानी हो रही है उसमें शिद्दत का वो सबब बन सकती हैं। एनालिसिस हम लेंगे, चौधरी नुमान जफर हमारे साथ हैं और ज़ुबैर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट हैं, फॉर्मली एसोसिएटेड रहे हैं मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ, तो मशरक़ वस्ती की सियासत और हालात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। ज़ुबैर इकबाल साहब, अलकायदा, क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि बहुत अरसे के बाद एक बड़ी कार्रवाई जिसमें बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा, बड़ी तादाद में हलाकती हुई, उसमें अलकायदा एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आ रही है? ज़ुबैर इकबाल साहब जी, ज़ुबैर इकबाल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी गालबन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो नुमान जफर यही सवाल आपके साथ।
जी देखें, अलकायदा लग रहा है क्योंकि अगर इनको कंपेयर किया जाए जो आईएसआईएस की कार्रवाइयां हैं उनके साथ, तो वो दौलत इस्लामिया की कार्रवाइयों के साथ, तो वो वाकई इनकी कार्रवाइयां छोटी लग रही हैं फिलहाल हमें, जो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन जहां भी इन्हें मौका मिलता है ये अपनी कार्रवाइयां करते रहते हैं। अगर हम यमन में देखें, जो सऊदीया का यमन का मामला चल रहा है, उसमें भी अपना कुछ ना कुछ माइलेज हासिल करते रहते हैं। लेकिन ये जो 56 फौजियों को मतलब कत्ल करने वाला वाकया है जो, और जो इन्होंने फौजी एयरबेस को कब्जा किया, ये एक मेरे ख्याल में एक बड़ी कार्रवाई है जो उन्होंने की है। लेकिन अगर आप शाम की सिचुएशन देखें, जितने प्लेयर वहां पे अपनी गेम्स खेल रहे हैं, तो उसमें ये मेरे ख्याल में तो एक छोटी बात है। देखें भी पिछले दिनों रशिया ने ऐलान किया था कि हम उनको मतलब वेपनरी देंगे, और ये भी कुछ खबरें आ रही हैं अमेरिकन कुछ लोगों की तरफ, अपना स्पोक्समैन वगैरह की तरफ से, कि जी शाम अपना रशिया के बूट्स वहां पे आ चुके हैं जिन्होंने कार्रवाइयों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अब आप देखें, एक तरफ एक 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 दुनिया की सुपर पावर जो रही है, तो कोल्ड वॉर के अल्फाज इस्तेमाल करें, जो एक पोल था सोवियत यूनियन का और उसके बाद रशिया बन गया, वो आ गया गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है अपने लाइट फोर्सेस के साथ, वो उसको उतारने के टॉपल करने के कोशिश में लगा हुआ है। ईरान अपनी गेम वहां पे खेल रहा है, तो एक वहां पे एक अजीब सी सूरत हाल है। और ये इन बेचारे फौजियों का मरना और इसी तरीके से दूसरे जो 27 के 28 जो वो भी फौजी मारे गए हैं जो दौलत इस्लामिया वालों ने कलमायरा के अंदर मारे हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बड़ी चीज है। जो हालात वहां चल रहे हैं उसमें तो एक तरह का नॉर्मल मामला लगता है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल अलकायदा जो है अपना वो इंडिकेशन देती रहती है कि हम भी मैदान के अंदर हैं।
एग्जैक्टली जुबैर इकबाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप गालिबन मेरा सवाल सुन सकी होंगी, हम अलकायदा सीरिया के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई, बड़े अरसे के बाद अलकायदा का एक बड़े ऑपरेशन के अंदर नाम आ रहा है, 56 सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग उनको हलाक करने की तलाते हैं वहाँ से। एक तो यही बताइएगा कि शाम के अंदर से जब हमें ख़बरें आती हैं तो वहाँ अगर कुछ नज़र नहीं आता तो वो रिजीम की एक्टिविटी नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ़ नॉन स्टेट एक्टर्स, मुख्तलिफ़ बड़े दहशतगर्द ग्रुप जिसमें अलकायदा है, दाइश बहुत बड़ा फिनोमेना है, वो वहाँ पर, या वहाँ से माइग्रेंट्स जो हैं उनकी खबरें आ रही हैं, या दीगर रियासतों का अमल दखल जैसे रशिया का, रिजीम कहाँ पे है और सीरिया की क्या पिक्चर बन रही है दुनिया के सामने?
ये बहुत लंबा सा सवाल आपने पूछा है, लेकिन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। सबसे अहम बात यह आ जाती है कि जहाँ तक वहाँ की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हाफिज जो साफ गवर्नमेंट जो है वो अब जिसे कहते हैं मुख्तसर से इलाके में अपना कब्जा रखती है। वो इलाका वेस्टर्न सीरिया है जिसमें अंताकिया वगैरह है और उसके साथ साथ दमास्कस का कुछ हिस्सा है जो इसके साथ रहता है। अच्छा, उसकी वजह से जहाँ तक ताल्लुक है अपने गवर्नमेंट का, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड हो चुकी है। याद रहे कि वहां पर पहले से ही कई किस्म के ग्रुप जो थे वो कम्पीट कर रहे थे, और उसमें जहां तक अलकायदा का ताल्लुक है, अलकायदा के एजेंट्स का ताल्लुक है, उसके साथ साथ जो दूसरे ग्रुप आ गए जिसमें इस्लामिक स्टेट भी शामिल है, और उसके साथ साथ कुर्द और दूसरी छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं वो सब शामिल हैं। उसकी वजह यह है कि सीरिया एक बेसिक कोहेसिव मुल्क नहीं था, इसको क्रिएट किया गया था, और इसीलिए वहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, वो रीजनल या ट्राइबल किस्म की आइडेंटिटी है।
सही।
ऐसी कंडीशन में ये तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर गवर्नमेंट इस काबिल नहीं कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके या इकोनॉमिक कंडीशंस को इस तरह प्रोड्यूस कर सके, तो फिर जाहिर है कि वहाँ पर उन्हें लिमिटेशन होगी कि वो किस हद तक कंट्रोल कर सके। अब हुए यही है कि चूंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर हो चुकी है, नंबर एक, नंबर दो उनको नेशनल सपोर्ट कभी भी नहीं थी, और नंबर तीन वहाँ की मिलिट्री पोजीशन कमजोर होती चली गई क्योंकि वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट जो मिलिट्री अथॉरिटीज थी उनको जो सपोर्ट रशिया की तरफ से आती थी वो कमजोर हो चुकी थी। अब उसके बाद यकीनन चूंकि टेंशन बढ़ी और दूसरे जो एजेंट्स थे या दूसरे ग्रुप्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश की, खासतौर पर अरब स्प्रिंग के बाद, तो फिर इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल था। अब उसकी वजह से ये जो आपको इस वक्त नजर आ रही है महाजरीन की प्रॉब्लम, उसकी वजूहत यही है। बेसिक वजह यही है कि वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी ना होने की वजह से लोगों को वहाँ से निकलना पड़ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि मेजॉरिटी जो है उसको जैसे कहते हैं अपनी रोजगार के लिए कोई मौका नहीं है। ऐसी इसी कंडीशन में आपको ये रेफ्यूजी मूवमेंट या महाजरीन की मूवमेंट नजर आती है। इसका क्या होगा? सबसे अहम बात यही आ जाती है कि वो कहाँ जाएंगे।
ये हमारा चूंकि अगला मौजू भी है, माइग्रेंट्स पे हम खासतौर पे अगले टॉपिक में बात भी करेंगे, थोड़ा सा इसका जो पॉलिटिकल एंगल है नुमान जफर इसको वाइंड अप कीजिएगा। जो रशियन रोल है सीरिया के अंदर वो मामला को कितना पेचीदा मजीद बना रहा है या कम्प्लिकेट कर रहा है? आपने भी हवाला दिया कि वहाँ पे बूट्स ऑन द ग्राउंड होने की इतलात मिल रही हैं। आज जो एक स्टेटमेंट कोट हुआ है उनके रशियन फॉरेन मिनिस्टर का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट असद कहें तो बाकायदा वहाँ पे जंगी तैयारे भी भिजवाए जा सकते हैं, लड़ाका तैयारे भिजवाए जा सकते हैं।
जी देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक वर्ड हम यूज करते हैं, उसको हम स्टेलमेट कहते हैं कि जब कोई इस तरह का मामला जब स्टेलमेट सिचुएशन में आ जाए ना कि ना वो आगे जा रहा हो ना पीछे, यानी कि फंस जाए जिसको, तो उसमें फिर एक तीसरा फैक्टर, तीसरा
लड़ाका फौज में, माफी चाहता हूं, तैयारी और फौज
और वो फिर जो है ना सिचुएशन और वहाँ की जो केमिस्ट्री है उसको बदल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि रशिया का आने का जो फैसला हुआ और अगर उसने वाकई अपनी प्रेजेंस यहाँ पे शो की तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो पूरी डायमेंशन चेंज कर सकता है। तो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, और ये जो जो डिसबैलेंस हुआ हुआ है उसको फिर बैलेंस करने का मामला होगा, और तब जो जितने भी प्लेयर हैं वो टेबल पे बैठेंगे और ये फिर मामला सोल्यूशन की तरफ जाएगा। बेशक सोल्यूशन ये हो कि जो प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट साहब बैठे हुए हैं इनको टॉपल किया जाए, इनको चेंज किया जाए या कुछ और मामला किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है एक बहुत अहम फैक्टर होगा जो डिटरमिन करेगा नई डायरेक्शन को।
एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी नवान सफर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ रहिएगा, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आयशा तंजीम ब्यूरो चीफ वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। खालिद हमीद फारूकी साहब भी गालबन हमें ज्वाइन करने की पोजीशन में होंगे एक ब्रेक के बाद।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ پہ براہ راست سن بھی رہے ہیں اور ہمارے سیٹلائٹ ویور ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے شام سے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جو پناہ گزین ہیں، جن کا رخ جو ہے وہ یورپی ممالک کی طرف ہے، خاص طور پہ ان کی جو منزل یا ڈیسٹینیشن ہے وہ جرمنی نظر آتا ہے، اور اس کے لیے وہ یورپ کے مختلف ممالک کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے جرمنی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں۔ عائشہ تنظیم بیورو چیف ہیں وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان ریجن کے لیے، وہ اس وقت ہنگری میں موجود ہیں اور مختلف ان بارڈرز ایریاز کا وہ وزٹ کر چکی ہیں، اور کئی ایک جو وہاں پہ آنکھوں دیکھا حال وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، اور انہوں نے جو مشکلات آبزرو کی ہیں ان امیگرنٹس کی، ان مائیگرنٹس کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیگر جو پولیٹیکل ایشوز خاص طور پہ یورپ کے اندر ان تارکین وطن یا ان پناہ گزینوں کے ریفرنس سے پیدا ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں، اور زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں اس پہ ہم ان کا انالیسز لیں گے۔ عائشہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ نے مختلف ایریاز میں دیکھے ہیں جہاں پہ وہ پوائنٹس جہاں پہ تارکین وطن یا پناہ گزین سیریا، یمن اور دیگر شور زدہ علاقوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کیا ان کی مشکلات آبزرو کی ہیں یا انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں؟
دیکھیے، سب سے بڑی مشکل جو یہاں پہ پیش آ رہی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ وہ زبان نہیں بولتے، یہاں کی مقامی پولیس، مقامی جو اتھارٹیز ہیں وہ انگریزی بھی نہیں بولتی، عربی نہیں بولتی، پشتو نہیں بولتی، دری نہیں بولتی۔ جو پناہ گزین آ رہے ہیں وہ زیادہ تر یا عربی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں، یا افغانستان سے ہیں یا مشرق وسطی کے ممالک سے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرے خیال میں جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، ان کو آفیشل کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، راستہ نہیں پوچھ سکتے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کہاں جائیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو زبان کا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، سچویشن اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا میں مختلف ملکوں میں مختلف بارڈر پہ گئی ہوں، کرویشیا اور سربیا کا بارڈر، ہنگری اور سربیا کا بارڈر، سربیا کے اندر شہر، ہنگری کے اندر شہر۔ لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بارڈر پہ جاتے ہیں، وہ بارڈر کھلا ہوتا ہے، ہم وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سے واپس ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، دو گھنٹے کے اندر اندر پتا چلتا ہے وہ بارڈر بند ہو گیا۔ جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ بارڈر پہنچتے ہیں بند ہوتا ہے، پھر دو گھنٹے بعد کھل جاتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ یورپ کی تمام حکومتیں انتہائی کنفیوزڈ نظر آ رہی ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ پھر تیسری بات مشکلات کی آپ نے بات کی، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ایک بچہ ہم نے دیکھا جو 7 سال کا تھا، ابھی راستے میں پیدا ہوا تھا، ایک 5 سال کا بچہ جو ٹیئر گیس کا شکار بنا، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ایک شخص جو شام میں اپنا تمام کاروبار آدھی قیمت پہ بیچ کے نکلا تھا کیونکہ اس کے گھر پہ بمباری ہو گئی تھی، وہ $10,000 لے کے نکلا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تمام مشکلات ہمیں اثر راستے میں دیکھنے کو
میں ان کے ایشوز پہ پھر آؤں گا کہ مغربی ممالک کس طرح سے منقسم ہمیں نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ جرمنی کی آفر کے بعد۔ لیکن عائشہ میں یہ بتائیے کہ کیا آپ کو زیادہ تر جن مائیگرنٹ سے یا پناہ گزینوں سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ خالصتاً جنگ اور شورش سے اور سیاسی حالات سے تنگ ہیں، یا ان کے اندر وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کا ایک فطری طور پہ رجحان ہوتا ہے مغرب میں جا کے آباد ہونے کا؟ اور اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا سوال یہ بھی کہ کیا وہ عارضی پناہ گزین ہیں یا کبھی وہ واپس یا وہ مستقل سکونت کا ارادہ رکھتے ہیں؟
جی اسد, اس میں تمام قسم کے لوگ شامل ہیں, اگرچہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں, اور ان میں زیادہ تر شام اور افغانستان سے آنے والے ہیں, لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو صرف بہتر معاش کی تلاش میں یورپ جانا چاہتے ہیں. مثلا مجھے راستے میں کئی پاکستانی لڑکوں کے اور نوجوانوں کے گروہ بھی ملے جو لاہور سے یا پنجاب سے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ پنجاب سے ہیں تو وہ جنگ سے نہیں,
یعنی ہیومن ٹریفکنگ کا عمل دخل بھی ہے,
تلاش میں ہیں. پھر جو لوگ سیریا سے یا شام سے آئے ہیں, ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے ملک میں جنگ ختم ہو جائے تو وہ واپس جانا چاہیں گے, لیکن ابھی فی الحال جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. تو جو مطلب ہر طرح کے لوگ اس پورے ہجوم میں شامل ہیں.
زبیر اقبال صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو ظاہر ہے, اگر اس کی پولیٹیکل ریزن بہت آبویس ہیں, وار ہے, شورش زدہ علاقے ہیں جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں, لیکن کیا کوئی ایک سیفر زون انہیں علاقوں میں بنایا جا سکتا ہے مشرق وسطی کے اندر, جہاں پہ خالصتاً وہ لوگ جو جنگ سے یا سیاسی حالات سے تنگ ہیں, ان کو وہاں پہ ایک سیکیور یا سیف انوائرمنٹ دیا جا سکے اور ان کا بہاؤ جو ہے وہ یورپ کی طرف نہ ہو, کیونکہ یورپ کے بھی تو چیلنجز ہیں اس ریفرنس میں.
جی دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اب اس وقت اس مشکل میں ہے کہ وہ اس قسم کی انسٹیبلٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس قسم کی جو مہاجرین کی موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اکنامک کنڈیشنز بہتر ہونا ضروری ہوتی ہیں, وہاں پولیٹیکل کنڈیشنز بہتر ہونا ضروری ہوتی ہیں, وہاں پر فائنینشیل ریسورسز ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ تینوں چیزیں اس وقت مڈل ایسٹ میں نہیں ہیں, کیونکہ اب دیکھیے اس وقت 2 ملین کے قریب سیرینز جو ہیں وہ ترکی میں رہتے ہیں, 1.1 ملین جو ہیں وہ لبنان میں رہتے ہیں, کوئی 1 ملین کے قریب اس وقت جارڈن میں رہتے ہیں. لیکن یونائیٹڈ نیشنز کے لیے جتنے پیسے چاہیے ان کو رہنے کے لیے, ان کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کا صرف 30% حصہ ابھی تک کمٹ ہوا ہے. ایسی کنڈیشن میں اور کیسے لوگ سپورٹ یا پروٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں؟ وہ ممالک جہاں پر ریسورسز ہیں وہ ان کو, خاص طور پر جی سی سی کے ممالک جو عرب رچ جو آئل پروڈیوسرز ہیں, وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ کیا سوچیں گے؟ دراصل بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سپلائی ہے اور دوسری طرف ڈیمانڈ بھی. دیکھیے, جہاں تک سپلائی کا معاملہ ہے, ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ, خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ جو سیریا کے اور جو عراق کے تھے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ گورنمنٹ سٹیبلائز ہو جائیں گی اور وہاں پہ اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو جائیں گی اور وہاں رہ سکیں گے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا, تو ان کو وہاں سے نکلنا ضروری ہو گیا ہے. زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں ان کے رشتہ دار یا دوسرے لوگ ابھی یورپ میں ہیں, اس لیے وہ یورپ ہی میں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ رہ سکیں اور اس کے بعد سیکیور کریں. مجھے امید نظر نہیں آتی کہ اگر یہ لوگ گئے تو یہ واپس آئیں گے.
Exactly. تو اگر واپس نہیں آتے تو یورپ کے لیے بھی بحران ہے. عائشہ تنظیم, آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ چونکہ بہت بڑا انسانی بحران ہے, اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن فوری طور پہ ان لوگوں کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, امدادی تنظیمیں وہ کیا کر رہی ہیں, اور دوسرا پھر پولیٹیکل اینگل کہ یورپ بذات خود اس میں کتنی بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے ان پناہ گزینوں کو ایڈجسٹ کرنے یا اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے.
میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتی ہوں کہ یورپ بہت زیادہ منقسم ہے اور ہمیں بڑی تقسیم نظر آتی ہے مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان, یعنی جرمنی, آسٹریا, سویڈن, نیدرلینڈز, اس قسم کے ملک ایک طرف ہیں, اور ہنگری, سلووانیا, کروشیا, چیک ریپبلک, یہ جو مشرقی
آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایون یورپی یونین کی اپنی جو یونین ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس ایشو کی وجہ سے.
ایگزیکٹلی, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جرمنی جیسے ممالک جن کو پتا ہے کہ شام اور عراق سے آنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو شاید ضرورت بھی ہے کچھ پڑھی لکھی لیبر کی, اور انہوں نے اپنے سرحدیں کھول دی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب تو مطلب 5 لاکھ قریب پناہ گزینوں کو ہر سال ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جبکہ جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں ان کے پاس پہلے ہی ریسورسز کی کمی ہے اور وہ نئے پناہ گزینوں کو نہیں لینا چاہتے. تو ایک تو یورپ میں بہت تقسیم ہے. دوسری بات, آپ نے امداد کی کہی, تو میں آپ کو بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑی آرگنائزیشن کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ مدد ان پناہ گزینوں کو مل رہی ہے وہ عام لوگوں سے مل رہی ہے, چاہے آپ وہ بوداپیسٹ میں ہوں, چاہے بیلگریڈ میں ہوں, چاہے کسی بارڈر پہ ہوں. وہ یہ رہا ہے کہ عام لوگ, उस शहर के, उस गांव के, दूसरे मुल्कों के, जर्मनी से लोग आए हुए हैं, स्वीडन से लोग आए हुए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आप किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं, हमने फेसबुक पे पढ़ा कि यहाँ मदद की जरूरत है, हमने खाना उठाया, पानी उठाया, हम यहाँ आ गए। तो आम लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यूरोपियंस की इन लोगों में खाना और पानी और डायपर्स और हर किस्म की चीजें तकसीम कर रही है, बहुत मैस मोबिलाइजेशन है आम शहरियों की।
जी डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, एक मिनट में आप इसको सम अप कर सकते हैं, यूरोप के लिए इसका जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इस बुहरान के? जी
अभी तक यूरोप ने कोई इस किस्म की पॉलिसी नहीं बनाई थी कि जो मास किस्म की मूवमेंट जो है महाजरीन की, उनको मैनेज कर सके और कंट्रोल कर सके, जिसमें एलोकेशन भी शामिल है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला भी है। अब उनको इस पर काम करना होगा क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं है। इस किस्म की मास मूवमेंट चलती रहेंगी क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर होती जा रही हैं, चाहे वो ईस्ट यूरोप से आएँ या वो यूरोप या वो अफ्रीका से आएँ या मिडल ईस्ट से आएँ, ये होगा। इसलिए यूरोपियन यूनियन को एक नई पॉलिसी बनाना होगी जिसकी बेसिस पे इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो और एक स्टैंडिंग पॉलिसी हो।
जुबैर इकबाल साहब, वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट एनालिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आयशा तंजीम, ब्यूरो चीफ, वॉइस ऑफ अमेरिका फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रीजन, हंगरी से आप हमारे साथ मौजूद थी, जहाँ पे इस वक्त बहुत इन्फ्लक्स है माइग्रेंट्स का, तारिकीन वतन या पना गुजीनों का, आपने वहाँ से हमें अपडेट किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पर बात करेंगे।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा, आखिरी 10 मिनट हमारे पास, बात हम करेंगे स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे। और क्रिकेट में आपको मालूम है कि आइंदा जो टूर्स हैं पाकिस्तान के सामने, उसमें एक जिम्बाब्वे है और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलना है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लवर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगा। जिम्बाब्वे को निस्बतन आसान लिया जाता है, अगरचे बहुत सारे प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि उनको आसान नहीं लेना चाहिए है, लेकिन दोनों बहरहाल टूर्स के लिए टीमें सिलेक्ट हो चुकी हैं, तीनों फॉर्मेट्स के लिए टेस्ट टीम ऐलान कर दिया गया है। मिसबाह उल हक उसको लीड करेंगे, वनडे टीम के लिए आपको पता है अजहर अली कैप्टन हैं, और T20 शाहिद खान आफरीदी वो कैप्टन हैं। और T20 में ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि दो तीन नए चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं, आमिर यामीन और इमरान खान जूनियर। एक इमरान खान जो हैं वो बताते खुद अभी बहुत सीनियर नहीं हुए, लेकिन चूँकि इनका नाम भी जो इमरान खान है तो इसको मजीद उनसे जूनियर कहा गया है। T20 में शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही। याह्या हुसैनी के, अगर आपने प्रोग्राम कल देखा हो, जो इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, बता रहे थे कि उनके प्रोग्राम से ही मालूम हुआ कि वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे, और उनका एक्शन भी बड़ा इंस्पायरिंग था, और उनकी स्लो बॉल्स, उनकी स्लो डिलीवरीज, वेरिएशंस, उनको बाहर अल सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में मदद फ्राहम की है उन्होंने, और वो टीम का हिस्सा है। नए चेहरे कितना प्रेशर डेवलप करेंगे सीनियर्स के ऊपर, और टीम की एक ओवरऑल जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एनालिसिस हम लेंगे। डॉक्टर काशिफ सुहेल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, US बेस्ड क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत फ़ैन हैं क्रिकेट के, और इसके अलावा क्रिकेट एंड चैरिटी वो भी साथ साथ चलती है, और अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं पाकिस्तान की टीवी के लिए। याह्या हुसैनी, वेल नोन स्पोर्ट्स एंकर, रिपोर्टर जियो टेलीविजन के साथ वाबस्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। याह्या, आपसे शुरू करते हैं, अगर मैं पहला सवाल सिर्फ नए चेहरों का करूँ, आपने उनको फॉलो भी किया है, आपने उनको देखा भी है, कितना ये खुशकुन पहलू है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल असद, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। असद देखें, एक बात जो मेरे समझ नहीं आती वो ये है कि हम हर बार ये बात करते हैं कि नए चेहरों की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है। अगर मैं इस एतबार से देखूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर आपने मुल्तान के आमिर यामीन को और पेशावर से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान जूनियर को मौका दिया, दैट्स गुड। बट आप अगर देखें तो पिछले तीन चार टूर से वर्ल्ड कप 2017 के बाद आपने ट्राई किया समी असलम को, एक टूर के बाद वो किधर गए, उसके बाद उसी टूर पे आप साद नसीम को लेकर आए, वो कहाँ गायब है, फिर आप फवाद आलम को वापस लेकर आए, और अब आपने उनको टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर दिया है। तो ये इंतहाई अहम नौयत की चीजें हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर इस दौरे की मैं बात करूँ तो एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंडक्शन है इमरान खान जूनियर, लेकिन इन लोगों को अभी बहुत आगे जाना है, इन लोगों को अपने आप को भी साबित करना है.
Exactly.
तो अभी इनके बारे में ये कह देना कि ये अभी बहुत अच्छे हैं, खबला वक्त होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में
सही. लेकिन एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर भी होता है. डॉक्टर काशिफ सुहेल साहब, आप बताइएगा, जैसे समी असलम की तस्करा इन्होंने किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नज़र आई, अंडर 19 में रही, बड़े मर्द बहरान किस्म के वो प्लेयर जो हैं वो नज़र आए, लेकिन कोई गैर मामूली अगर कारकर्दगी नहीं थी तो इसका मतलब ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए. इसके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए बोर्ड के पास, उनकी ट्रेनिंग का, उनको मज़ीद एक तरह से कि उनकी जो स्किल्स हैं वो बेहतर हों और उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो और इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो कोप कर सकें.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया. आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो लड़के रियाया की बात से मैं एग्री करता हूं कि लड़कों को मौके दिए जाते हैं और क्रिकेट एक वाहिद हमारे यहाँ का इदारा है जिसमें कि टैलेंट को आगे आने से बहुत कम लोग रोक पाते हैं. अगर आप में सही मानों में टैलेंट है तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है और फिर अपने टैलेंट को आप साबित करें, लेकिन मौके कम मिलते हैं. बात है मौके की और कंसिस्टेंसी की और कॉन्फिडेंस की. अगर कॉन्फिडेंस लड़के के अंदर आप शो करेंगे, देखिए ना, विराट कोहली हुआ या रोहित शर्मा हुआ हिंदुस्तान का, इसके ऊपर सेलेक्टर्स ने कॉन्फिडेंस शो किया. रोहित शर्मा 3 दफा कमबैक कर चुका है और आखिर में आके वो बन गया प्लेयर और आज उनकी बैकबोन है. अजिंक्य रहाणे हुआ या इसी तरह से मोहम्मद शमी हुआ, इस तरह के लड़कों के ऊपर वो काम करते हैं. हमारे पास विजन ना होने की वजह से ये लड़के आते तो जरूर हैं और बड़े बड़े गंग हो स्टाइल में आते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका कैरियर अच्छा, एक दफा आने के बाद दोबारा उनके लिए कोई गुंजाइश बनती नहीं. हम फिर अगले सीरीज में 2 लड़के और नए ले आते हैं, फिर उनके साथ यही सलूक करते तो ले दे के वही जो चेहरे वही घूमते रहते हैं. लेकिन लड़कों को मौका मिलता है. मेरा कहने का मकसद ये कि लड़कों के साथ कंसिस्टेंसी कर होनी चाहिए, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा हमारा ना होने के बराबर है, चूंकि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो मौके कम हैं और इन मौकों में ही हमको तलाश करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकालने हैं.
या ये बताइएगा, दोनों तीनों फॉर्मेट्स के लिए टीम्स आपके सामने हैं और दोनों टूर्स आपके सामने हैं, कितनी तवक्कोआत रखी जाएं? इंग्लैंड जो है आपको पता है अभी जो रिसेंट उसकी फॉर्म है वो बहुत अच्छी लगी हुई है, ऑल दो ओडीआई सीरीज आ रहा, लेकिन एशेज जो सीरीज़ है वो उन्होंने बड़े मार्जिन से अपने नाम की, क्या तवक्कोआत रखी जाए? थोड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज होगा और पाकिस्तान अपनी पिछली परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकेगा?
असद, मैं इंग्लैंड की सीरीज की बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज अभी दूर है, अभी आपकी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है और अगर पेपर पे देखा जाए तो पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन मैं जिम्बाब्वे की सीरीज को इतना आसान नहीं ले रहा. ठीक है, ये सीरीज हमारे लिए इस एतबार से आसान है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए हम क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 2014 में हम मिसबाउल हक के साथ जिम्बाब्वे गए थे तो 15 साल के बाद हम वहाँ एक टेस्ट मैच हार गए थे, 15 साल के बाद जिम्बाब्वे ने हमें वनडे मैच में शिकस्त से दो-चार किया था और अब इस टीम में कई नए चेहरे हैं. और जो दूसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ मुश्किल कुन सूरत हाल हो सकती है, अजहर अली फरीजा हज अदा करने के लिए गए हैं, उनके साथ अरशद शफीक है, सरफराज अहमद है जो कि खास तौर पर वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे. देखिए, फरीजा हज की अदायगी एक बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन हज के बाद आपको बहुत ज्यादा जो है वो वीकनेस होती है और आपको थोड़ा सा जो आराम की जरूरत होती है, तो ये इतना आसान नहीं होगा कि वो हज करने के बाद जो है एक बार फिर पाकिस्तान टीम को कैप्टन सर्व करें. हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल सीरीज मुझे नजर आ रही है और बेस्ट विशेष मेरी पाकिस्तान टीम के लिए है कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे.
काशिफ सुहेल साहब, आपके ख्याल में जैसे अगर आपके मेन प्लेयर्स फरीजा हज अदा कर रही हैं तो क्या ये वैसे भी बेहतर मौका नहीं था कि जिम्बाब्वे भारत एक निस्बतन कमज़ोर टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत पीछे है, तो आप अपने नए टैलेंट को पूरा मौका देते या कम से कम उन प्लेयर्स को जो भारत इन आउट का शिकार रही हैं?
बिल्कुल, इससे ज्यादा बेहतर मौका मिल नहीं सकता था. मेरा हमेशा से यही कहना रहता है कि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं हिंदुस्तान की, श्रीलंका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, जो मौके मौके से अपने सीनियर खिलाड़ियों को ब्रेक दे करके नए लड़कों को मौका देते हैं और फिर उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनकी पीठ थपकते कि जाओ हमें पता है तुम अच्छा परफॉर्म करोगे और फिर वो परफॉर्म करके आते हैं. अब देखिए, धोनी ने खेल बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में करके ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रहा, वो कीपर ट्राई कर रहे हैं और यही होना चाहिए बड़ी टीमों के साथ, यही होना चाहिए उन लोगों के साथ जो विजन रखते हैं. हमारे यहाँ चूंकि विजन नहीं है, हमारे यहाँ चूंकि कल की नहीं सोचते, जो कुछ है आज है, तो उसकी वजह से हमारे लड़कों को वो मौका नहीं मिलता. इससे बेहतर मौका कभी हो नहीं सकता था कि ये जैसे कि समी असलम हुआ, इस तरह से लड़के जितने भी नए लड़के आ रहे हैं इनको मौका देते कि जाओ तुम खेलो और अपने आप को साबित करो. अब क्या होगा, अजहर अली, असद शफीक और सरफराज हज करके आएंगे, हज करके जनाब वो भागेंगे, वनडे सीरीज खेलेंगे, एक तो जेट लैग का शिकार, नजला जुकाम اور پھر پرفارم اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ ایک کیا کہتے ہیں وہ ڈبا پڑ جائے گا کہ دیکھیں جی زمبابوے خلاف ہار کے آ گئے.
صحیح.
تو یہ ویژن نہ ہونے کی وجہ سے.
Exactly. اور پھر یہ کہ سینئرز کے لیے جو کہتے ہیں کہ ایک پریشر ڈیولپ ہونا کہ نئے لوگ اگر آ رہی ہیں اگر ان میں سے کوئی پرفارم کر گیا تو ڈیفینیٹلی پھر سینئرز پہ دباؤ تو رہتا ہے. ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے, مختصراً یہ بتائیے گا ڈاکٹر کاشف صاحب, ابھی آپ نے شاہد آفریدی کو اور دیگر کچھ پلیئرز کو ہوسٹ بھی کیا, جو پاکستان کے وہ جو ٹینٹڈ پلیئر جن کو کہا جا رہا ہے جن کی واپسی پہ بڑی بحث ہو رہی ہے, اس کے بارے میں شاہد آفریدی کا کیا خیال ہے؟ آپ کی کچھ بات شیئر ہوئی ان کے ساتھ؟
پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, بہت پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی ہے, 3-4 دفعہ میں نے اس سے فیس ٹو فیس
جی
سوال ہے بورڈ سے پوچھا جائے, میرا اس میں نہ تو فیصلہ ہے نہ میری رائے ہے. مسئلہ یہ کہ کیمپ کے اندر ان لڑکوں کی آمد ان لوگوں کی واپسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے ڈریسنگ روم میں, یہ میں نے اس سے باتوں میں اندازہ لگا لیا.
بہت شکریہ آپ کا.
یونس خان, مصباح الحق, شاہد آفریدی, وقار یونس, مشتاق احمد, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیمپ کے اس وقت کرتا دھرتا ہے ڈریسنگ روم
پہ, ان کے
دلوں میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہے, کوئی نرم گھٹکا نہیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یحییٰ حسینی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.